ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल रात स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पीडएक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV-C60 रॉकेट को दो अंतरिक्ष यानों के साथ प्रक्षेपित किया गया। इस रॉकेट ने SDX-01 यानी चेजर और SDX-02 यानी कि टारगेट नाम के दो उपग्रहों को पृथ्वी के निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। ये दोनों उपग्रह अगले 10 दिन के दौरान अंतरिक्ष में संयुक्त करने के लिए आगे बढ़ाए जाएंगे। स्पीडएक्स मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष में डॉकिंग की क्षमता की उन्नत प्रौद्योगिकी प्रदर्शित करना है। ये मिशन चंद्र अभियान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे भविष्य के कार्यक्रमों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि दोनों उपग्रहों के पैनल सफलतापूर्वक तैनात कर दिए गए हैं। ये उपग्रह 20 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और फिर डॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद दोनों उपग्रह करीब आएंगे और फिर अंतरिक्ष में एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार यमन में रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन सरकार द्वारा सुनाई गई मौत की सजा के मामले में हर संभव मदद कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार यमन की घटना से अवगत है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुश्री प्रिया केरल की रहने वाली हैं और यमन में हत्या के मामले में दोषी हैं। सरकार ने डीजी यात्रा ऐप के डेटा का उपयोग कर चोरी पकड़ने के लिए किए जाने की मीडिया में आ रही खबरों और रिपोर्ट को खारिज किया है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि डीजी यात्रा पर उपलब्ध यात्रियों का आंकड़ा कर अधिकारियों के साथ साझा नहीं किया जाता है। ये ऐप केवल घरेलू यात्रियों के लिए है और इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नहीं होता है। उधर आयकर विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नकली औषधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करके 6,60,00,000 रुपए की औषधि जब्त कर ली है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और औषधि नियंत्रण प्रशासन ने कोलकाता में एक संयुक्त छापेमारी की। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई सभी औषधियां कैंसर, मधुमेह और अन्य खर्चीले चिकित्सीय उपचारों से संबंधित हैं। एक वक्तव्य में कहा गया है कि सभी औषधियों पर आयरलैंड, तुर्की, अमेरिका और बांग्लादेश सहित विभिन्न देशों में निर्मित किए जाने के रूप में लेबल किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा अगले वर्ष 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। इससे करदाताओं को योजना में निर्दिष्ट देय राशि निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। बजट में घोषित योजना का उद्देश्य करदाताओं को आयकर विभाग के साथ विवादों को सुलझाने में मदद करना है। केंद्र सरकार ने केरल के वायनाड में 30 जुलाई को हुए भीषण भूस्खलन के व्यापक असर को देखते हुए इसे अत्यंत गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को सूचित किया है कि राज्य आपदा प्रबंधन कोष से दी गई प्रारंभिक सहायता के अलावा अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल के मूल्यांकन के बाद राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र के निर्णय का स्वागत किया है। रेलवे प्रयागराज महाकुंभ के लिए 3,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें 1,800 छोटी दूरी और 700 लंबी दूरी के लिए रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। 560 रेलगाड़ियां प्रयागराज में बनाए गए रिंग रेल मार्ग पर चलेंगी। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा। उत्तर भारत में शीतलहर जारी रहने से कई राज्यों के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शीतलहर जारी रहेगी। हरियाणा और चंडीगढ़ में आज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में कल तक अधिक ठंड रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी शीतलहर जारी है। रेलवे ने बताया कि कोहरे के कारण लगभग 30 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। इनमें कर्नाटक एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति, तेजस राजधानी, लखनऊ मेल, ऊंचाहार एक्सप्रेस सहित कई अन्य रेलगाड़ियां शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली में नववर्ष समारोह के दौरान सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। यातायात पुलिस के अपर आयुक्त दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों में आज रात 8 बजे से नववर्ष के समारोह के पूरे होने तक पाबंदियां लगाई गई हैं। हॉकी इंडिया लीग में आज राउरकेला में दिल्ली SG पाइपर्स का सामना हैदराबाद तूफान से होगा। ये मैच रात 8:15 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात यूपी रुद्राज ने पिछले विजेता कलिंग लांसर्स को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।